नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि नेहरू ना होते तो कश्मीर ना होता। कश्मीर एक ऐसा मुद्दा जिसका जिक्र छिड़ते ही नेहरू पर आरोपों की बौछार शुरू हो जाती है। पहला आरोप लगता है कि जब देसी रियासतों के भारत संघ में विलय का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल देख रहे थे तो नेहरू ने कश्मीर का मामला अपने हाथ में क्यों लिया। आरोप के समर्थन में दलील भी दी जाती कि वे कश्मीरी पंडित थे, इसीलिए उन्हें कश्मीर से भावनात्मक लगाव था और इसी चक्कर में उन्होंने ये मुद्दा अपने हाथ में लिया और सब कुछ खराब कर दिया। वैसे तो सवाल और भी बहुत सारे हैं, लेकिन नेहरू के आलोचक मुख्य रूप से उन्हें तीन सवालों के इर्द गिर्द उन्हें घेरते हैं और बहस के अंत में ये निष्कर्ष निकालते हैं कि कश्मीर की मौजूदा समस्या के लिए संपूर्ण रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू ही जिम्मेदार थे। वैसे तो इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया जा सकता है, लेकिन इन्हें समझने के लिए बात को शुरू से ही शुरू करना पड़ेगा। तो बात यहाँ से शुरू होगी कि आखिर जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा इस आधार पे हुआ था कि हिंदू बहुल इलाके भारत में रहेंगे और मुस्लिम बहुल इलाके पाकिस्तान में चले जाएंगे, तो फिर मुस्लिम बहुल कश्मीर आखिर किस तरह भारत में आया होगा। उस समय जबरन किसी राज्य पर कब्जे का सवाल ही नहीं था, क्योंकि विभाजन की भूमिका अंग्रेजी राज में ही तय हो रही थी और दोनों ही पक्षों को नियम कायदों से बंधना था। भारतीय पक्ष पर नियम कायदे का बंधन इसलिए भी ज्यादा होना था क्योंकि उसके नेता महात्मा गांधी थे। दूसरी तरफ बंगाल और पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य थे। इन राज्यों को हिंदू और मुस्लिम आबादी के वजन के हिसाब से दो दो हिस्सों में बांट दिया गया। मुस्लिम बहुल हिस्सा पाकिस्तान बना और हिंदू बहुल हिस्सा भारत में शामिल हो गया। तो क्या ये कश्मीर में नहीं हो सकती थी? कश्मीर भी तो दोनों देशों के बीच था। यहाँ भी ये हो सकता था कि हिंदू बहुल जम्मू और बौद्ध बहुल लद्दाख भारत में आ जाते और कश्मीर का इलाका मुस्लिम बहुल होने के कारण पाकिस्तान में चला जाता। कश्मीर भारत में ऐसे ही नहीं आ गया, उसे शामिल करने के लिए लंबी कूटनीतिक लड़ाई लड़ी गई। एक ऐसी लड़ाई जिसने भारत के विभाजन के दोनों मूल्य सिद्धांतों को कश्मीर के मामले में बेअसर कर दिया और कश्मीर का भारत में विलय हो गया। इस कूटनीतिक लड़ाई के चाणक्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने कश्मीर की बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी के नेतृत्व को पाकिस्तान के साथ जाने की बजाय भारत के साथ खड़ा कर दिखाया। इसीलिए जब कबीलाई हमले के समय राजा हरि सिंह ने भारतीय संघ में विलय का समझौता किया, तो ठीक उसी समय कश्मीर की जनता के लोकप्रिय नेता की हैसियत से शेख अब्दुल्ला ने भी भारत में विलय स्वीकार किया और वे कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री बने। तो उस समय कश्मीर को लेकर नेहरू क्या सोच रहे थे, ये भी जानने की जरूरत है। 7 अगस्त 1952 को संसद में दिए एक भाषण में नेहरू कहते हैं, मुझे इस संदर्भ में कश्मीरी कहा जाता है कि 10 पीढ़ी पहले मेरे पुरखे कश्मीर से उतरकर भारत आ गए थे, लेकिन ये वह बंधन नहीं है जिसके कारण मेरे कश्मीर दिमाग में आता है। वह दूसरे ही बंधन है जिन्होंने हमें एक दूसरे से बांध दिया है। कश्मीर का यह बंधन अगर भावनात्मक नहीं था तो और क्या था? इसे जानने के लिए जरा उस कहानी की ओर देखते हैं जो 1947 से शुरू हुई। कश्मीर एक ऐसा राज्य था जिसकी सीमा उस समय सोवियत संघ, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत जैसे 5 देशों को छूती थी। इसके अलावा सीकियांग और तिब्बत से होकर गुजरने वाली 900 मील की सीमा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिभाषित नहीं थी। ये रूस और चीन से हिमालय और पामीर के पर्दों से ढका था। कश्मीर कितना महत्वपूर्न था, इसे दिसंबर 1955 में भारत की यात्रा पर आए सोवियत संघ के राष्ट्रपति खुश्चेव की इस बात से समझा जा सकता है। खुश्चेव कहते हैं कि आप पहाड़ी की चोटी पर चढ़ जाएं तो आवाज लगाकर हमें बुला सकते हैं। इसीलिए नेहरू के लिए कश्मीर सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला नहीं था। कश्मीर की सरहद का रूस, चीन और अफगानिस्तान की सीमाओं को छूना नेहरू के दिमाग में बराबर चलता रहा था। कश्मीर पर कबाइली हमले के एक हफ्ते बाद 2 नवंबर 1947 को राष्ट्र के नाम संदेश में नेहरू कहते हैं, कश्मीर एक ऐसा भूभाग है जिसकी सीमाएं बड़े देशों को छूती हैं, इसलिए वहां हो रही गतिविधियों में हमें दिलचस्पी दिखानी ही होगी। इसके 3 हफ्ते बाद उन्होंने इसी बात को संविधान सभा में दिए गए बयान में और स्पष्टता से रखा। नेहरू वहां कहते हैं, अपनी भौगोलिक स्थिति और सीमाओं के कारण जो कि 3 देशों सोवियत संघ, चीन और अफगानिस्तान को छूती है, कश्मीर ऐतिहासिक और अंतर्राष्ट्रीय रूप से भारत से जुड़ा हुआ है। वह जानते थे कि अगर कश्मीर भारत में नहीं रहा और पाकिस्तान में चला गया या फिर आजाद हो गया तो दुनिया की शक्तियां कश्मीर के बहाने भारत के सिर पर नाचती रहेंगी। यह भारत की सुरक्षा के लिए एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय खतरा बन जाएगा। यह कैसे संभव हुआ कि मुस्लिम बहुल आबादी वाले कश्मीर के जन नेता मुस्लिम लीग के बजाय कांग्रेस के साथ खड़े हों? थोड़ा पीछे चलते हैं। आजादी की लड़ाई के दौरान कांग्रेस पार्टी की घोषित नीति थी कि कांग्रेस अंग्रेजी राज के खिलाफ तो अभियान चलाएगी लेकिन देसी राजाओं की रियासतों के जन आंदोलन से सीधे नहीं जुड़ेगी। एक तरह से देसी रियासतों में कांग्रेस होगी ही नहीं। बाद में कांग्रेस ने अपने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में स्पष्ट किया कि भले ही राजाओं के खिलाफ कांग्रेस सीधे कोई आंदोलन नहीं करेगी लेकिन कांग्रेस के नेता अपनी निजी हैसियत में वहां चल रहे आजादी के आंदोलन को मदद दे सकते हैं। इस काम के लिए कांग्रेस ने अखिल भारतीय प्रजा परिषद का गठन किया जो रियासतों में चलने वाले आंदोलन से जुड़ी रहती थी। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू इस संस्था के अध्यक्ष थे। 1929 में लाहौर में हुए कांग्रेस के अधिवेशन से पहले अशिक्षित और दबे कुचले कश्मीरियों के लोग राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक नहीं थे। नेहरू की अध्यक्षता में हुए इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य बताया और यह पहला मौका था जब कश्मीर में राजनीतिक जागरूकता ने जोर पकड़ा। उस समय 25 साल के बेरोजगार अध्यापक शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर में आजादी के लिए आंदोलन का नेतृत्व शुरू किया। 1931 में शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में कश्मीर में एक छोटा सा प्रदर्शन हुआ जिसके बाद अब्दुल्ला को कई हफ्तों के लिए जेल में डाल दिया गया। उसके बाद अक्टूबर 1932 में बने अब्दुल्ला के संगठन ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने कई विरोध और प्रदर्शन किए। अब्दुल्ला शुरू से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष राजनीति से प्रभावित थे और वह विशेष तौर से नेहरू के करीब आ रहे थे। बदले में नेहरू ने भी उनकी राष्ट्रीय सोच की तारीफ की और उसे स्वीकारा। धीरे धीरे दोनों व्यक्ति करीब दोस्त हो गए। नेहरू के इसी दृष्टिकोण से प्रभावित होकर के अब्दुल्ला ने 1939 में ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम बदल करके ऑल जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस करना घोषित किया। जब अब्दुल्ला अपने संगठन में धर्म विशेष की जगह राष्ट्रवादी बदलाव कर रहे थे तो उनके संगठन का एक छोटा धड़ा चौधरी गुलाम अब्बास के नेतृत्व में अलग हो गया जो खुद को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ही कहता रहा। इस पूरे घटनाक्रम से इतना तो समझा ही जा सकता था कि नेहरू बहुत पहले से कश्मीर को भारत में लाने की तैयारी में जुट गए थे। एक तो वे प्रजा परिषद के अध्यक्ष होने के नाते राज्यों के आंदोलन से जुड़े हुए थे और दूसरे यह कि उन्होंने बहुत सावधानी से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम और नीतियां समय रहते बदलवा दी और उसे नेशनल कॉन्फ्रेंस करा दिया, उसे धर्म निरपेक्ष नीतियों के साथ ले आए। तो इन सब से पता लगता है कि न सिर्फ नेहरू ने कश्मीर के मुस्लिम नेतृत्व को सिर्फ राजनीति और कूटनीति से भारत के पक्ष में किया बल्कि असल में अपना दिल कश्मीर को दे करके कश्मीरियों का दिल भी भारत के पक्ष में किया। इसीलिए जब हरि सिंह ने भारत में विलय के दस्तावेज पे दस्तखत किए तो उसे स्वीकृति देने के लिए कश्मीर की जनता की तरफ से शेख अब्दुल्ला खड़े हो गए और अगर शेख अब्दुल्ला की सहमति ना होती तो कश्मीर की जनता की सहमति भी नहीं होती। जवाहरलाल नेहरू मार्च 1948 में संविधान सभा में एक भाषण देते हैं और उसमें वे कहते हैं कि सीमा पार के हमारे विरोधी कह रहे थे कि यह हिंदू और मुसलमान का झगड़ा है। हम कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों की मदद करने के लिए वहां गए हैं। कश्मीर की बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी हमारे साथ नहीं है। इससे ज्यादा सफेद झूठ और क्या हो सकता है। हम वहाँ कश्मीर के महाराजा के न्योते पर भी नहीं जाते अगर उस न्योते को वहाँ की जनता के नेताओं की सहमति हासिल नहीं होती। मैं सदन को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी सेनाओं ने वहाँ अदम्य बहादुरी का परिचय दिया लेकिन इन सब के बावजूद हमारी सेना को कामयाबी नहीं मिली होती अगर उन्हें कश्मीर के लोगों की मदद और सहयोग ना मिलता। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस तरीके से जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल मिलकर के कश्मीर मसले को सॉल्व कर रहे थे। धन्यवाद। जय हिंद।